ओम शांति। आप जानते हैं दादी प्रकाशमणि ने 25 अगस्त को क्या कहा था, 5 बार कहा था, बचत करो बचत करो बचत करो। हमने देखा है बाबा की जो प्रेरणा होती है ना, उस प्रेरणा को साकार करने के लिए उसी प्रकार के व्यवसाय के अनुभवी बहन भाई भेज देते हैं। तो हमारे पास लार्सन एंड टुब्रो कंपनी करके है, बॉम्बे की बहुत प्रसिद्ध कंपनी है, इंटरनेशनल कंपनी है, बहुत कुछ देश विदेश में उनके प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्शन के प्रोजेक्ट चलते हैं। उनके डायरेक्टर्स जो ब्रदर मखीजा जी है, उनके साथ में मिलकर के उनके दो असिस्टेंट जो है, एक गुप्ता जी और फड़के जी, दोनों वहां पर बहुत बड़े कारोबार का इंचार्ज भी है। और फिर आज इन्होंने अपना वहां का जो टेक्निकल एडवाइजर जो थे, जो है मतलब शरद काले, ये पद्म विभूषण भी है और भावा एटॉमिक रिसर्च कंपनी जो है उसके भी डायरेक्टर है और बायोटेक्नोलॉजीज के फील्ड में बहुत बड़े नामी ग्रामी एक्सपर्ट है। तो कैसे यहाँ पर भी हम चाहते हैं कि हमारा जो फ्यूल जो है, ट्रांसपोर्ट का खर्चा जो है, हमारा पानी का जो खर्चा जो है, हमारा और भी ये जो किचन वेस्ट होता है उसमें से बायोगैस कैसे हो सकता है और कैसे उसके द्वारा बचत का कारोबार हो सकता है, ये सारी बातें जो है, 5-6 बातें जो है उसको यहाँ पर जो भी अपने डिपार्टमेंट हेड्स है उनके साथ मीटिंग होती रहती है। तो इस मीटिंग के अंतर्गत अपना जो कारोबार जो है उसके अंदर और भी ज्यादा अच्छी रीत से सुझाव मिले, उसके कारण प्रातः काले जी जो है उनको बॉम्बे से यहाँ बुलाया हुआ है। तो यहाँ इनकी एक ही प्रॉब्लम है, उनके पास टाइम की मारामारी है और उसके कारण मैं हमेशा मैं भी अपने कहता हूँ मुझे टीबी है, क्योंकि टाइम की बचत जो है ना उसके बारे में टीबी, टाइम की बचत की प्रॉब्लम है, दुनिया में सबको प्रॉब्लम है टाइम की। तो इस प्रकार से आज ही आए हैं और कल सुबह ऊपर पांडव भवन जाएंगे और फिर दोपहर में 11 बजे निकल करके अहमदाबाद होकर के फिर बॉम्बे जाएंगे। तो इसके कारण हमने शील बहन को कहा और दादी रतन मोहिनी और मुन्नी बहन को भी कहा कि इनका जो है यहाँ पर अपने भाई बहन जो है, दादी ने तो भी दादी से मिल के आया, दादी ने कहा परसों आते से तो सारा ये ऑडियंस भरा हुआ होता था, कल आधे पौने चले गए, आज थोड़े ही रहे हुए हैं। तो इसके कारण फिर भी जितने भी है उनका उनको लाभ मिले और दादी जी ने भी उनको निमंत्रण दिया हुआ है, तो इस प्रकार से अभी तो आने जाने का खेल होता ही रहेगा। तो इस प्रकार से उनको मैं कहूंगा अपने विचार जो है, अपने दिल से जो भी बात निकले, जो भी अनुभव की बातें जो है उस प्रकार से सबको बताएं कि कैसे इस प्रकार से विज्ञान जो है, हम भी चाहते हैं ज्ञान और विज्ञान, फिलोसॉफी एंड साइंस। अपने बॉम्बे में एक बार ऐसे अपना कॉन्फ्रेंस भी रखी थी कि स्पिरिचुअलिटी एंड साइंस दे आर पार्टनर्स फॉर प्रोग्रेस। तो इस प्रकार से विज्ञान जो है ज्ञान के क्षेत्र में कैसे मददगार बन सकता है और उसके कारण ज्ञान का प्रसारण करना कितना सहज हो सकता है, इस बारे में हमारे लार्सन एंड टुब्रो के साइंटिस्ट जो है और हमारे काले जी जो है वहाँ भाभा एटॉमिक रिसर्च का जो भी सेंटर जो है BAR से कहते हैं शॉर्ट में, उनके साइंटिस्ट भी है और भारत सरकार ने भी उनको सम्मानित किया है। तो इस प्रकार से वो अपना विचार सुनाएंगे। प्रातः शरद काले जी।
मंच पर उपस्थित सम्माननीय परिजन और मेरे भाइयों और मेरे बहनों, एक अनोखा मंच मुझे आज सौभाग्य से प्राप्त हुआ है। आपके सामने खड़ा होने की हिम्मत तो कर रहा हूं लेकिन वो हिम्मत कितनी निभाऊंगा मुझे पता नहीं। आप मेरे दो शब्द सुनेंगे। मैं हमेशा कहता हूं कि मेरा जो भाषण होता है, जो भी 2-4 शब्द मैं कहना चाहता हूं वो खत्म होने के बाद शुरू होते हैं। मैं यही चाहूंगा कि हम, मेरा और आप सभी का एक ऐसा रिश्ता बने जो हम भूल न पाए, क्योंकि इस विश्व में जिसलिए हमें भेजा गया है उसमें हमारा कर्तव्य क्या है ये जानना, ये जान लेना और वो जानकर उसके साथ उस तरह का बर्ताव करना जिससे वो कर्तव्य पूरा हो सके। ये कुछ शब्द, मेरे अनुभव के शब्द, कुछ मेरे विज्ञान के शब्द आपके सामने सुनाने जा रहा हूं। हिंदी मेरी मातृभाषा नहीं है, शायद कोई गलती करूंगा, वो गलतियां आप माफ कर देंगे बड़े दिल से, इसका मुझे विश्वास है। कभी कभी ये माहौल देख के थोड़ा सा घबरा जाता हूं, इतने सारे लोगों के सामने शायद पहली बार बात कर रहा हूं, और ये सारे जो श्रोतागण मेरे तरफ देख रहे हैं उनके मन में क्या आता होगा इसके बारे में जब सोचता हूं कि एक वैज्ञानिक सामने खड़ा है, वो कुछ ऐसी भाषा में बात करेगा जो किसी को समझेगी नहीं, क्योंकि वैज्ञानिक ऐसे ही होते हैं जिनकी भाषा समझती नहीं है, और वैज्ञानिक बड़े क्रोध से गुस्से से लोगों की तरफ देखते हैं और उनके बाल बहुत बड़े होते हैं, ऐसा एक वो वैज्ञानिकों के बारे में एक सिद्धांत जनमत में होता है, लेकिन मैं अपनी तरफ से कोशिश करूंगा कि मेरी भाषा आप समझ सके। आज के डेट में, आज की तारीख में ये पूरे विश्व में कितनी समस्याएं हैं, अगर ये समस्याएं गिनना शुरू करें तो अगणित समस्याएं हैं, और गिनने में इतना समय जाएगा कि ना तो हम वो समस्या सुलझा सकोगे, उसमें शायद बढ़ोतरी हो जाएगी। लेकिन एक समस्या जरूर यह है कि थोड़े समय में अपने पूरे विचार व्यक्त करना ये बहुत बड़ी समस्या होती है, लेकिन उस पे कुछ तो करके मुझे आपके पास तीन चार विचार जरूर पहुंचाने हैं। एक प्रयोग वैज्ञानिक होने के नाते गए 14 साल से मैं एक प्रयोग कर रहा हूं, जो प्रयोग मैं आपको पहले बताना चाहता हूं, एक छोटा सा प्रयोग कर रहा हूं, और मैं ये चाहूंगा कि आप में से कई सारे जो जानकार है वो भी एक प्रयोग करे, और उस प्रयोग के साथ एक ऐसा मॉडल बनाए जो आने वाले पीढ़ी को कोई तो संदेश दे सके। ये क्या प्रयोग है, मैंने एक मेरी प्रयोगशाला में एक कांच की बोतल ली है जिसे वैज्ञानिक भाषा में डेसिकेटर कहा जाता है, अभी हम डेसिकेटर नहीं कहेंगे, हम उसे कांच की बोतल कहेंगे, बड़ी बोतल है, उसमें एक 10 लीटर पानी बैठ सकता है, मतलब 10 लीटर क्षमता वाली एक बोतल कांच की मैंने ली है। उस कांच की बोतल में मैंने 14 साल पहले, वो डेट याद है मुझे, 1 जून 1999 ये तारीख थी, उस दिन मैंने वो कांच की बोतल साफ की और उसमें 800 ग्राम मिट्टी और 200 ग्राम खाद, सेंद्रीय खाद, वो दोनों मिला के उसमें डाल दिए, और मेरे हाथ में एक पौधा लगा, वो था मनी प्लांट का। वैज्ञानिकों के पास पैसा तो नहीं होता है लेकिन मनी प्लांट जरूर होता है, तो मेरे पास मनी प्लांट था, वो मनी प्लांट को कुछ 3-4 पत्ते थे, और वो पौधा मैंने उस डेसिकेटर में, उस कांच की बोतल में उसको लगा दिया, और कांच का जो मुंह है वो बहुत बड़ा था, उसके पश्चिम दिशा में रख दिया, और रोज उसमें मैं पानी डालता था। रोज पानी इसलिए डालता था कि जब हम कोई भी पौधा गमले में लगाते हैं तो गमले के छोटा सा छेद करते हैं ताकि ज्यादा पानी उसमें नहीं रहे और वो पौधा ज्यादा पानी से मर न जाए, इसलिए एक्सेस पानी जो होता है, ज्यादा पानी जो होता है उसका, वो निकल जाने के लिए उसको छेद करते हैं। अभी कांच की बोतल को छेद करने का इतना बड़ा वैज्ञानिक मैं नहीं था, इसलिए मैंने कांच की बोतल को छेद नहीं किया, उसमें उतना ही पानी डालता था जितना पानी वो हवा में निकल जाता था। तो ऐसे रोज पानी डालना शुरू किया, 3 महीने के बाद वो कांच की बोतल में एक बहुत अच्छी परिसंस्था बन गई, उसमें मनी प्लांट बढ़ रहा था, उसमें कीड़े मकोड़े थे, उसमें अर्थवर्म्स थे, ऐसा एक बहुत अच्छा सिस्टम बना, और ये रखा था मैंने पश्चिम दिशा में जहां डूबती हुई सूरज की किरणें उसके ऊपर गिरती थी। फिर एक दिन आया, वो दिन था 31 अगस्त 1999, उस दिन मैंने कहा अभी प्रयोग शुरू करें, तो तीन महीने क्या किया साहब आपने, प्रयोग अभी शुरू कर रहे हैं तो तीन महीने क्या है, तीन महीने प्रयोग की तैयारी हो रही थी। तीन महीने के बाद 31 अगस्त 1999 को मैंने वो जो डेसिकेटर था उसका ढक्कन लिया, कांच की बोतल थी उसका ढक्कन लिया और उस ढक्कन को एराल्डाइट लगाया। एराल्डाइट कोई चिपकाने वाली चीज होती है, एराल्डाइट लगवाया और वो एराल्डाइट से वो ढक्कन सील किया। ये दिन था 31 अगस्त 1999। आज की डेट है 1 मार्च 2014। मतलब एक वनवास पूरा हो गया है उस पौधे का, 14 साल से ज्यादा समय उसमें बीत गया है। और 14 साल से ज्यादा समय में मैंने वो बोतल एक बार भी खोली नहीं है, लेकिन उसकी जो उसमें जो मनी प्लांट का पौधा है वो बहुत अच्छी तरह से बढ़ रहा है, पूरे बोतल में फैल गया है। उसमें जो कीड़े मकोड़े थे वो अभी भी जिंदा है, उसमें जो अर्थवर्म्स थे वो भी अभी भी जिंदा है। ये बोतल में बाहर से सिर्फ सूरज की किरणें आती है, ढलती हुई सूरज की किरणें आती है, पश्चिम दिशा से आती है और वो इस बोतल में गिर रही है और ये पौधा बढ़ रहा है। इसमें 14 साल मैंने पानी नहीं दिया है। विश्वास आता है आपको? ये क्यों हो रहा है, ये क्यों हो रहा है? क्योंकि उस मिट्टी में जो मूल तत्व है वो मूल तत्व उनका पुनर्चक्रांकन हो रहा है, वो मूल तत्वों का पुनर्चक्रांकन हो रहा है। जिस दिन मैंने वो बोतल सील की थी उस दिन उसमें जितना पानी था वो अभी भी है, क्योंकि वो ढक्कन पूरा बंद किया हुआ है, वो पानी जाएगा किधर? तो ये पौधा लेता है पानी और ये पौधा अपना जो पानी लिया वो उसे बाहर छोड़ देता है, वो जाएगा किधर? वो डेसिकेटर के वो जो ढक्कन है उस पे जाके कंडेंस होता है और मेरे डेसिकेटर में, मेरे बोतल में रोज बारिश होती है सुबह। वो जो पानी गिर रहा है, वो पानी फेंक रहे हैं, वो पानी रोज गिरता है, मेरे डेसिकेटर में रोज बारिश हो रही है। जो पत्ता गल जाता है, पत्ता पुराना होके गल जाता है, वो नीचे मिट्टी में गिरता है और मिट्टी में जो सूक्ष्म जीव है वो उसका विघटन करके उसके मूल तत्व वापस उस नए आने वाले पत्ते को देते हैं। आपको मालूम है कि जो पत्ते सूर्य प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण करते हैं उसमें रासायनिक क्रिया लिखी जाती है 6 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 6 वाटर गिव्स 6 ग्लूकोज मॉलिक्यूल देते हैं, C6H12O6 और प्लस 6 ऑक्सीजन। तो प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन मुक्त होता है, रेस्पिरेशन में कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होता है, प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड लिया जाता है, रेस्पिरेशन में कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होता है। ये इनका चक्र चल रहा है, पानी का चक्र चल रहा है, मूल तत्वों का चक्र चल रहा है। मेरी ये परिसंस्था, मैं निकल जाऊंगा लेकिन उसके बाद भी चलती रहेगी, ये मेरा पूरा विश्वास है। तुलसीदास जी ने अपने रामायण में लिखा है, बहुत अच्छा अच्छी बात लिखी है, क्षिति जल पावक गगन समीरा, क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अधम शरीरा। इसमें क्षिति है मट्टी है, जल है पावक है हवा जो है उसमें ट्रैप हुई हुई, क्षिति जल पावक गगन स्पेस है उसमें, समीरा बाहर से तेज आ रहा है, इससे से जो सृष्टि उत्पन्न हुई है ये सृष्टि चलती रहेगी हमेशा की तरह, ये सृष्टि कभी भी खत्म नहीं होगी। अभी मैं ये प्रयोग आपको रात के 9 बजे क्यों सुना रहा हूं, उसका एक मतलब है कि अगर इस पृथ्वी, ये छोटी जो पृथ्वी मेरी बनी है ये और बड़ी पृथ्वी, ये दोनों की आप तुलना करें, ये दोनों की आप एक कंपैरिजन करें तो आपके समझ आएगा, मेरी जो पृथ्वी है वो छोटी है, उसमें सिर्फ मनी प्लांट है, उसमें सिर्फ कीड़े मकोड़े है, इसमें सिर्फ अर्थवर्म्स है और सूक्ष्म जीव है, लेकिन ये बड़े पृथ्वी पर 750 करोड़ लोग बैठे हैं, 350 करोड़ बहने हैं, 350 करोड़ भाई है, थोड़ा रेशो इधर उधर होता होगा पता नहीं, लेकिन 750 करोड़ लोग यहां इस पृथ्वी पर है। इस मेरे पृथ्वी में बाहर से सिर्फ सूरज की किरणें आती है, बड़े पृथ्वी पर भी बाहर से सिर्फ सूरज की किरणें आती है। मेरे छोटे डेसिकेटर में सारे के सारे मूल तत्वों का पुनर्चक्रांकन होता है, पृथ्वी पर भी पूरे पुनर्चक्रांकन का मूल तत्व पूरे मूल तत्वों का पुनर्चक्रांकन होता रहता है। तो ये कहानी बताने की नौबत क्यों आ गई? ये नौबत इसलिए आ गई कि आज की डेट में, आज की तारीख में ये मूल तत्वों का जो पुनर्चक्रांकन है वो धोखे में आ गया है। हम समझते नहीं है, हम सोचते नहीं है, कितनी सारी चीजें हम करते रहते हैं बिना सोचे समझे। ये छोटी बोतल जो है कांच की, वो सील मैंने की है। वो जो बड़ी पृथ्वी है वो सील किसने की है मुझे मालूम नहीं। बहुत ऑप्शन है हमारे पास, 33 करोड़ ऑप्शन है। किसी का नाम आप डाल सकते हो, शंकर ने सील की है, विष्णु ने सील की है, गणेश जी ने सील की है, और किसी ने सील की मुझे मालूम नहीं, लेकिन सील जरूर की है। इस पृथ्वी पर भी बाहर से सिर्फ सूरज की किरणें आती है, और इसीलिए यहाँ के जो पूरे मूल तत्व है इनका पुनर्चक्रांकन करना हमारी जिम्मेदारी है। जो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, उपनिषद में कहा गया है, सारे संत महात्म्य बताते हैं, एक चीज बताते हैं। ये क्या बताते हैं? अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं। किस लिए कहते हैं मैं ब्रह्म हूं? इस ब्रह्म का आस्वाद लेने के लिए, इस ब्रह्म का उपभोग लेने के लिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। मुझे बहुत सिमिलैरिटी दिखती है आइंस्टाइन में और श्री कृष्ण में। आइंस्टाइन ने एक बहुत अच्छा सिद्धांत लिखा था। आइंस्टाइन ने कहा था, ये जो जागतिक रंगमंच है, इस मंच पर आप खुद को हटा दो और क्या बचता है देखिए। अगर आप खुद को हटा देंगे तो कुछ नहीं बचेगा, जीरो भी नहीं बचेगा, जीरो का कोई मीनिंग होता है। तो ये अगर आप समझिए कि काले साहब यहाँ भाषण नहीं दे रहे हैं, काले साहब कहीं और बंबई में बैठे हैं, तो आपको कोई मतलब नहीं है मेरे से। अगर हम सामने नहीं है तो कोई मतलब नहीं होता। अहम ब्रह्मास्मि का मतलब कि आप इतने इम्पोर्टेंट है, आप इतने महत्वपूर्ण है इस विश्व के लिए, इस विश्व का एक अविभाज्य अंग आप बने हैं, इस विश्व के प्रति आपकी क्या कर्तव्य है, ये आपको सोचने का समय है। इसलिए 9 बजे का समय मैंने लिया कि हमारा कर्तव्य क्या है। ये पृथ्वी का रक्षण करना, ये वसुंधरा का रक्षण करना, ये हमारा सबका कर्तव्य है। हमारे माइथोलॉजी में, पुराणों में कहा गया है, इस विश्व में दो चिरंजीव है, एक है अश्वत्थामा और दूसरे है हनुमान जी। मेरी मुलाकात दोनों से नहीं हुई है, लेकिन मेरी मुलाकात एक अमर चीज से जरूर हुई है, और वो अमर चीज है हमारे रसायन शास्त्र में जो इसे पीरियोडिक टेबल कहते हैं, वो है। इस विश्व में, इस पृथ्वी पर जितना कार्बन शुरू में था उतना ही कार्बन आज है। इस पृथ्वी पर जितना पानी शुरू में था उतना ही पानी आज है। इस पृथ्वी पर जितना ऑक्सीजन शुरू में था उतना ही ऑक्सीजन आज है। इसे हम विज्ञान की भाषा में कहते हैं पदार्थ के अविनाशित्व का सिद्धांत। पदार्थ का नाश नहीं होता, पदार्थ नए तरीके से पैदा नहीं होता, पदार्थ के सिर्फ स्वरूप में फर्क होता है। कार्बन का कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड से फिर कार्बन बनेगा, कार्बन के टोटल क्वांटिटी में कोई चेंज नहीं होगा। हमारे जो मेरी बॉटल जो है उसका वजन आज तक 1 मिलीग्राम से भी बड़ा नहीं है या कम नहीं हुआ है, क्योंकि जब पौधा बढ़ता है तो मिट्टी का वजन कम हो जाता है, पौधे के पत्ते गल जाते हैं तो मिट्टी का वजन बढ़ता है, पौधे का कम हो जाता है, दोनों का सिस्टम का जो वजन है वो कांस्टेंट रहता है, वो उसमें कोई बदल नहीं होता। विज्ञान और अध्यात्म, ये दोनों शब्द यहां काफी बार बोले गए, मेरे हिसाब से बहुत कम फर्क है दोनों में। जो चीजें हमें समझती है उसे हम विज्ञान कहते हैं, जो चीजें हमें समझती नहीं है उसे हम अध्यात्म कह देते हैं। आत्मा क्या है, आत्मा हमें समझा है क्या? विज्ञान को अभी समझा नहीं है, इसका मतलब हमें आत्मा नहीं समझा है क्या? ये जो मूल तत्व है इनमें और आत्मा में कोई फर्क नहीं है। ये जो ब्रह्म तत्व बना है, हमारे आर्किमिडीज जी वही कहते हैं, आइंस्टाइन जी भी वही कहते हैं, श्री कृष्ण जी भी वही कहते हैं, ये जो ब्रह्म तत्व है इस ब्रह्म तत्व का आप एक छोटा सा पार्ट हो, लेकिन आप इतना इम्पोर्टेंट पार्ट हो कि आप अगर निकल गए वो ब्रह्म तत्व का मीनिंग कम हो जाता है। इसलिए वापस वो जो अहम ब्रह्मास्मि में, अहम ब्रह्मास्मि बोलते समय हमें एक और एक वाक्य याद रखना चाहिए जो उपनिषदों ने बताया है, जो संतों ने बताया है, जो विज्ञान ने बताया है। क्या वाक्य है वो? अहम ब्रह्मास्मि के साथ एक और वाक्य जोड़ना है, वो वाक्य है इदम न मम। यज्ञ को जब हम हवन करते हैं तब जरूर कहते हैं इदम न मम, ये मेरा नहीं है। पूरा मोह छोड़ के, पूरा मायाजाल छोड़ के वो हम यज्ञ को अर्पण करते हैं कहते हुए इदम न मम। अगर अहम ब्रह्मास्मि और इदम न मम ये दो चीजें आपके साथ है तो आपका जीवन अतिशय सुंदर है। आपके जीवन का अर्थ आपको समझा है, इस जीवन में आपने जो भी समय बिताया वो समय इस पृथ्वी का जो सौंदर्य है वो बढ़ाने के लिए किया है, इसका ये मतलब है। इसलिए ये दो चीजें बहुत जरूरी है याद रखना। ये जो दो कैरेक्टर है, एक मेरा विज्ञान का आइंस्टाइन और दूसरा जो है वो हमारे श्री कृष्ण महात्मा, इनके साथ और एक कैरेक्टर मैं जोड़ना चाहता हूं। हमारे मराठी में एक निरक्षर जिसे लिखना नहीं आता था, जिसे कहना नहीं आता था, बोलना नहीं आता था, ऐसी एक कवयित्री थी, उसका नाम था बहिणाबाई चौधरी। वो बहिणाबाई चौधरी ने इतनी सारी कविताएं बोली और वो कविताएं उनके लड़के सोपानदेव चौधरी ने लिख के ली। उस हरेक कविता में पूरे जीवन का तत्व ज्ञान इतनी अच्छी तरह से उन्होंने बताया, लेकिन इस माहौल के लिए ये जो मैं अहम ब्रह्मास्मि और ये कह रहा था कि इदम न मम, इसमें तीसरा जो उनका एक मराठी में वाक्य है, मराठी में कह के फिर हिंदी में बताऊंगा। मराठी में वो कहती है, जीवन आणि मरण किती रे अंतर, अरे एका श्वासाचं रे अंतर। वो कहती है जीवन और मृत्यु, जन्म और मृत्यु, ये दोनों में कितना फर्क है? वो कहती है सिर्फ एक श्वास का फर्क है। आप एक श्वास ले रहे हो, आप जिंदा हो, आपको क्रोध है, आपको अहंकार है, आपको प्रेम है, सारी भावनाएं इकट्ठा हो जाती है एक श्वास से। वो श्वास नहीं है, चार लोग जमा हो जाते हैं और आपको पहुंचाने की भाषा करना शुरू करते हैं। इतना फर्क है एक श्वास। उस श्वास की कीमत क्या होती है? ये श्वास की कीमत क्या होती है? आपके घर में बिजली होगी, बिजली का बिल नहीं दिया तो क्या होता है? बिजली काट दी जाती है। दूध का बिल नहीं दिया तो जिससे दूध ले रहे हो मारने आ जाता है। बाजार में कोई चीज मुफ्त नहीं मिलती है, मुफ्त कोई बांटे नहीं जाते हैं, रोज का अनाज कोई बांटता नहीं है, रोज की रोज जाके आपको कोई चीजें मुफ्त में नहीं मिलती है, हर चीज को पैसे में कीमत करते हैं। मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूं, आप हवा कितनी लेते हो और उस हवा का मोल कितना है? जिस हवा के बिना आप आधे मिनट भी नहीं जिंदा रह सकेंगे, वो सबसे ज्यादा अहम महत्वपूर्ण है। बिजली से बिना आप जी सकते हैं, आप चावल के बिना जी सकते हैं, आप कपड़ों के बिना जी सकते हैं, आप शायद पानी के बिना भी दो तीन दिन जी सकते हो, लेकिन हवा के बिना आप आधे मिनट से ज्यादा नहीं जी सकते हो। वो कितनी लेते हैं हवा, कोई बता पाएगा? क्योंकि वो मुफ्त में मिलती है, इसलिए उसका मोल हम जानते नहीं है। अगर इसका मोल देना पड़े तो कितना देना पड़ता है? एक जैव वैज्ञानिक होने नाते मैं आपको बताता हूं, आपके यहां जो बैठे कोई भी व्यक्ति अपने श्वास गिन के देखिए, एक दिन में 21,000 बार श्वास लेता है वो। भरोसा नहीं है तो पूरा गिन के देखो, और गिनना बहुत कठिन है तो भरोसा रखिए, दोनों में से एक काम करना पड़ेगा। तो 21,000 बार श्वास लेते हो, आपके जो फेफड़े हैं वो फेफड़ों की क्षमता होती है 750 मिलीलीटर। 21,000 गुना 750 मिलीलीटर आप हिसाब कीजिए, 17,000 लीटर हवा रोज आपको लगती है, और 17,000 लीटर में 20% ऑक्सीजन होती है स्कूल में पढ़ाई की होगी तो याद होगा कि हम 20% ऑक्सीजन होती है, 21% ऑक्सीजन होती है। हिसाब के लिए 20% पकड़ी है, 3400 लीटर हवा उसमें ऑक्सीजन हमें लगता है, और 3400 लीटर हवा का ऑक्सीजन का आप तोली है वो 3 किलोग्राम होता है। और आज की डेट में जो कंपनी बेचती है ऑक्सीजन उसकी कीमत है 7000 रुपए किलो, मतलब 21000 रुपए का ऑक्सीजन आपको रोज लगता है, 21000 बार आप श्वास लेते हो, हर श्वास की कीमत 1 रुपया है। अगर प्रकृति ने तय किया ये बिल नहीं मिलेगा तो ऑक्सीजन का सप्लाई काट दिया जाएगा तो क्या होगा? ये सारी सभा शायद अपर ऊपर वाले मंजिल पे चलती रहेगी चित्रगुप्त के सामने, ना आप बिल दे पाओगे ना मैं बिल दे पाऊंगा। लेकिन ये बिल देना कैसे होता है, ये बिल देने कैसे होता है, इसका एक अच्छा तरीका मेरे स्कूल टीचर ने जब मैंने 5वीं में प्रवेश लिया था तब बताया था। हमारे स्कूल के संस्कार बहुत अच्छे थे, मेरी माताजी के संस्कार बहुत अच्छे थे, मुझे सबसे बढ़िया वैज्ञानिक गुरु मिली थी मेरी माताजी, और मेरे जीवन पर जिनका असर है ऐसे 68 शिक्षक जिनका नाम पता आज भी मेरा बाय हार्ट है। कोई भी चीज आप बाय हार्ट करिए मत, क्योंकि हार्ट में कोई भी चीज 3 सेकंड रहती है, इट शुड बी बाय ब्रेन, वी शुड लर्न बाय ब्रेन। तो मेरे दिमाग में अभी भी वो सारे एड्रेस बैठे हैं, सारे टीचर मुझे सामने दिखते हैं। वो एक टीचर ने, उनका नाम था नगरकर सर, प्रिंसिपल थे उस जमाने में, हम प्रिंसिपल को हेडमास्टर कहते थे। तो हमारे हेडमास्टर जी थे ना, बहुत अच्छी पर्सनैलिटी थी और हंस के बात करते थे हमेशा, आज भी मैं उनका चेहरा भूल नहीं पाता हूं। तो 5वीं में जब मैं प्रवेश लिया था तो मेरे हाथ में उन्होंने एक पौधा दिया था, और उस पौधा दे के कहा था कि मैं आपको एक जगह देता हूं, उस जगह पे यह पौधा लगाना है, और उसको आप स्कूल में 7 साल रहोगे, अगर फेल हो जाओगे तो ज्यादा रहोगे लेकिन 7 साल तो जरूर रहोगे, तो 7 साल में उसके आपको निगरानी करनी है, उसको पानी देना है रोज, अगर जरूरत पड़े तो खाद देना है। मैंने 7 साल वो काम किया और आज वो वृक्ष पीपल का वृक्ष है, वो आज 50 साल का वृक्ष अहमदनगर के सोसाइटी हाईस्कूल में अभी भी बढ़ रहा है। और मेरा 3 किलोग्राम का बिल प्रकृति को दे रहा है, क्योंकि ये पीपल का वृक्ष जो होता है, ऊर्ध्वमूलम अधःशाखम अश्वत्थम प्राहुर्व्ययम छंदांसि यस्य पर्णानि यस्तम वेदस वेदवित्, ये पीपल का वृक्ष 3 किलोग्राम ऑक्सीजन प्रकृति को वापस दे रहा है, मेरा बिल प्रकृति को वापस जा रहा है। लेकिन ये बिल दे कौन रहा है? मेरा बिल दे रहे हैं हमारे नगरकर सर। मैं ये चाहूंगा कि मेरे सामने बैठे हुए सारे बहन भाई ये तय करें कि हमारा खुद का ऑक्सीजन का बिल हम देंगे। एक वृक्ष लगाइए, आपका ऑक्सीजन का बिल आप दे सकेंगे। हम कभी ज्यादा सोचते नहीं है, हमारी रोज की जिंदगी में हम इतने उलझ जाते हैं कि हम सोचते नहीं कि प्रकृति हमारी कितनी अच्छी तरह से निगाह रखती है, कितनी अच्छी तरह से प्यार से संभालती है। आपने केले का फल देखा होगा, ये केले का फल एक अच्छी छिलके में बंद होके हमारे पास आता है, इतना अच्छा पैकिंग मुझे नहीं लगता आप भी कर पाओगे। आप कितने भी कुशल हो, इतना अच्छा पैकिंग जो बनाने का केले का बना हुआ है, इतना अच्छा पैकिंग आप भी नहीं कर पाओगे। प्रकृति इतना अच्छा पैकिंग करके हमें देती है, हाथ गंदे होके भी हम केले का फल खा सकते हैं, 3 जगह उसे खोलना और उसे खा लेना, हाथ बिना धोए, हाथ गंदे हो तो भी हम केले का फल खा सकते हैं। जिस छिलके में वो फल आया उस छिलके की हमें कोई शर्म नहीं आती जब तक उसमें केला छुपा हुआ है, लेकिन केला खाने के बाद ये जो मनुष्य का मन है वो कैसे पलट जाता है, उसे उस केले के छिलके से नफरत हो जाती है। उस केले के छिलके से घृणा हो जाती है और वो कार का दरवाजा खोल के उसे बाहर फेंक देता है या बालकनी का दरवाजा खोल के उसके बाहर फेंक देता है। जिस चीज ने उसके पास इतना अच्छा केले का फल लाया उसको गंदगी कहने का साहस उसे हो जाता है, उसे कूड़ा कहने का साहस उसे जाता है, इससे ज्यादा कृतज्ञ आदमी मैंने इस दुनिया में नहीं देखा है। प्रकृति के प्रति इतनी घृणा, जिस प्रकृति ने इस केले के छिलके बनाए जिसकी वजह से आप केला खा रहे हो, वो छिलके के प्रति इतनी घृणा। और ये भूल कैसे जाते हैं, अगर ये छिलका प्रकृति को वापस नहीं गया तो कल के आने वाले केले को छिलका नहीं होगा और फिर मेरे जो बच्चे हैं उनके जो बच्चे हैं उनको शायद केले खाने नहीं मिलेंगे क्योंकि हमने प्रकृति के प्रति बड़ी बेईमानी की है। आज देश में कहा जाता है कि विविधता में एकता है। तमिलनाडु में जाओ तमिल भाषा बोलते हैं, पंजाब में जाओ पंजाबी भाषा बोलते हैं, आंध्र में जाओ तेलुगु भाषा बोलते हैं, महाराष्ट्र में जाओ मराठी भाषा बोलते हैं। हमें बहुत गर्व है ये सारे हिंदुस्तान में विविधता है, लेकिन मुझे एक ही विविधता में एकता दिखती है और वो सारा जो कचरे का साम्राज्य बना हुआ है, आप उसमें बम्बई देखो, आप पुणे देखो, मालेगांव देखो, हरियाणा में कोई हिसार देखो, पंजाब में लुधियाना देखो, या आपका शहर देखो, आपका गांव देखो, कहीं सब जगह प्लास्टिक फैला हुआ है, सब जगह रास्ते में लोग थूके हुए हैं, सब जगह कचरा फैला हुआ है। क्यों होता है ये? अगर मैं किसी के घर आ जाऊं तो मुझे पक्का विश्वास है घर बहुत सुंदर होगा, लेकिन जब हम माउंट आबू रोड के रास्ते पे आ जाते हैं तो वो घर मेरा होता है, माउंट आबू रोड मेरा नहीं होता, वो म्युनिसिपालिटी का होता है। राजस्थान मेरा नहीं होता, महाराष्ट्र मेरा नहीं होता, वो झगड़ा कर रहे हैं उनको पूछो किसका है, लेकिन मेरा उससे कोई रास्ता नहीं है, रिलेशन नहीं है। और ये हमारे देश में होता है, जिस देश में एक अनोखा संदेश दिया पूरे विश्व को, वो संदेश दिया था वसुधैव कुटुंबकम, दिस वर्ल्ड इज माय हाउस, इफ द वर्ल्ड इज योर हाउस व्हाई इट इज सो डर्टी, सारा प्लास्टिक क्यों फैला हुआ है। हमारे देश में गोमाता की पूजा की जाती है, लेकिन सच्ची गोमाता की पूजा मैंने अमेरिका में देखी थी, जहां मेरी बेटी ने मुझे एक डेयरी में लेके गई थी। 30,000 गाय है उस डेयरी में, वो 30,000 गाय के शरीर पे कहीं भी गोबर का एक छिपका भी नहीं था, एक बूंद भी नहीं था। 3 बार वॉश किया जाता है उस गोमाता को, उस गोमाता का पूरा गोबर इकट्ठा करके उसके ऊपर गोबर गैस जो उन्होंने बनाया उसे बिजली पैदा की जाती है, और उस डेयरी की सारी जो चीज फैक्ट्री है और जो योगर्ट फैक्ट्री है, दही की फैक्ट्री है, ये दोनों फैक्ट्री उस बिजली पे चली जाती है, उस बिजली पे चलाई जाती है। उसमें जो खाद निकलता है, उस खाद में 10,000 हेक्टर जो उनका खेत है उसमें मकई का उत्पादन किया जाता है, उस मकई को दिया जाता है। उनका मकई का उत्पादन भारत से 4 गुना है क्योंकि उसमें सिर्फ सेंद्रीय खाद दिया जाता है, यूरिया का नाम नहीं है उधर, कहीं भी यूरिया नहीं डालते हैं। इसको सेवा कहते हैं, इसको पूजा कहते हैं। भारत में जो गौमाता की पूजा होती है दिवाली में, महाराष्ट्र में, गुजरात में गौमाता की पूजा की जाती है। बहुत सारे पशु वैद्यकों ने मुझे कहा कि जिस दिन हम गौमाता की पूजा करते हैं उसके दूसरे दिन वो बीमार हो जाती है, क्योंकि उसको हम अलग अलग चीजें खिलाते रहते हैं भगवान करके। आज की तारीख में हर एक गोमाता के शरीर में भारत में कम से कम 50 ग्राम और ज्यादा से ज्यादा 5 किलोग्राम प्लास्टिक है, और वो प्लास्टिक कहां से आया है, आपके घरों से आया है। लोग कहते हैं प्लास्टिक के बैन करो, मैंने कहा पूरे देश में बैन करने के लिए इतना समय लगेगा, आप खुद बैन करो ना, आप मत इस्तेमाल करो प्लास्टिक बैग। आज यहां जो बैठे लोग भाई बहन बैठे हैं, ये सारे तय करें मन में, आज से हम प्लास्टिक नहीं इस्तेमाल करेंगे। और जाने दीजिए संदेश, और यहां 4,000-5,000 लोग बैठे हैं, हर एक आदमी ने 10 लोगों को संदेश देना है, 50,000 लोगों के पास जाएगा, 5 लाख लोगों के पास जाएगा, 50 लाख 50 लाख लोगों के पास जाएगा, 5 करोड़ लोगों के पास जाएगा, पूरा भारत प्लास्टिक मुक्त होने में 2 महीने का भी समय नहीं लगेगा। मेरी माताजी लक्ष्मी पूजा के दिन, मुझे याद है वो दिन, 5वीं में था, उन्होंने मुझे कहा बेटा तुम अब बड़े हो गए हो, आज लक्ष्मी पूजा आप करोगे और लक्ष्मी पूजा करने के लिए आपको एक नया झाड़ू खरीदना पड़ेगा। तो मैंने पूछा माताजी ये झाड़ू किस लिए, तो उन्होंने कहा कि कल बताऊंगी। दूसरा दिन लक्ष्मी पूजा का था, लक्ष्मी पूजा के दिन फिर वो जो गहने वगैरह रखने थे रख लिए, पैसे रखने थे रख लिए और उसके साथ साथ झाड़ू रखा। और ये झाड़ू इसलिए रखा आप मुझे कुछ कह रही है नहीं। वो झाड़ू इसलिए रखा था, उन्होंने मुझे कहा था ये जो झाड़ू है इसे अलक्ष्मी कहते हैं, ये लक्ष्मी है ये अलक्ष्मी है, दोनों जुड़वा बहने हैं और दोनों को सह अस्तित्व होता है, ऐसा शब्द उन्होंने इस्तेमाल किया था। एक रहेगी तो दूसरी रहेगी, एक जाएगी तो दूसरी भी जाएगी। और ये आज पुनर्चक्रांकन का जो चित्र मैंने आपके सामने खड़ा किया, ये जो डेसिकेटर है इसमें पुनर्चक्रांकन का महत्व जो बताया, ये मेरे माताजी ने मुझे 7-5वीं में ये समझाया था लक्ष्मी पूजा के दिन, इसे पुनर्चक्रांकन कहते हैं। आपके मन में एक शब्द निकाल दीजिए, प्लास्टिक निकाल दीजिए, मैंने कहा, दूसरा और एक शब्द निकाल दीजिए और मैं यहां के आश्रम के पदाधिकारियों को भी वही विनती करूंगा कि कहीं भी कचरा शब्द हटा दीजिए। कचरा शब्द ने बहुत बड़ा घोटाला किया है। अगर ये समझो ये सच्चे फूल है, ये फूल कल मुरझा जाएंगे तो इसका कचरा बनता है, लेकिन हम ये नहीं जानते कि अगर ये कचरा वापस नहीं जाएगा तो कल के आने वाले फूल नहीं रहेंगे पेड़ पे, जैसे केले के छिलके नहीं रहेंगे। इसलिए इनको कचरा मत कहिए, इनको रिसोर्स कहिए। जहां भी कचरे की बिन आपने लिखी हुई है उसके ऊपर लिखी है रिसोर्स बिन, क्योंकि कोई भी चीज को आप संपत्ति कहोगे तो वो संपत्ति आप रखना चाहेंगे, फेंकना नहीं चाहेंगे। किसी को आप कूड़ा कहते हैं इमीडिएटली आपको लगता है इसको फेंकना चाहिए, तुरंत लगता है अब इसे फेंकना चाहिए, लेकिन अगर इसे संपत्ति कहोगे तो उसको अपने पास रखोगे। और कचरे का वर्गीकरण करना, अभी कचरा नहीं कहूंगा मैं, ये संपदा का वर्गीकरण करना बहुत जरूरी है। जर्मनी में मैंने देखा है कि 5 अलग अलग तरीकों से ये सारी चीजें रखी जाती है, कांच अलग रखी जाती है, धातु अलग रखा जाता है, प्लास्टिक और पेपर अलग रखा जाता है, और रसोई से आने वाला कचरा ये स्रोत जो है वो अलग रखा जाता है, और जो ये चारों में नहीं बैठेगा उसके लिए काले रंग का एक डब्बा रहता है, लाल रंग के डब्बे में कांच जाती है, नीले रंग के डब्बे में धातु जाता है, हरे रंग के डब्बे में रसोई से आने वाला स्रोत जाता है, सफेद रंग के डब्बे में प्लास्टिक और पेपर जाता है, और काले रंग के डब्बे में बाकी जो बचेगा वो जाता है। तो यह सारी म्युनिसिपैलिटीयां जर्मनी में पैसे कमाती है ये सारे स्रोत बेच के। हमारे मुंबई में हम 2400 करोड़ रुपए खर्चा कर रहे हैं कचरा उठाने के लिए और देवनार में फेंकने के लिए, ना उसका पुनर्चक्रांकन होता है ना वो प्रकृति के पास ठीक तरह से दिया जाता है। 2400 करोड़ रुपया, मुंबई देश का 1% हिस्सा है। 2400 करोड़ अगर बंबई में खर्चा होता है तो देश में कितना खर्चा होता होगा, 24 से ऊपर 2 जीरो आप डाल दीजिए, बायोलॉजिस्ट हूं मुझे मैथमेटिक्स ज्यादा आती नहीं है, इतना बड़ा पैसा सिर्फ कचरा उठाने के लिए और फेंकने के लिए खर्चा करते हैं। 7000 टन कचरा मुंबई में पैदा होता है रोज, और 7000 टन कचरा फेंकने के लिए 2400 करोड़ रूपये दिए जाते हैं। जब हमने कहा कि हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो म्युनिसिपैलिटी वाले कहते हैं आपको किसने बताया प्रॉब्लम है करके, आप समझ जाओगे, ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। और यही मानसिकता है, ये मानसिकता जिसे हमने विज्ञान, वो दुर्दैव यह है हमारे देश में, हमारे देश में मार्क्सवादी लोग ज्यादा हो गए। मैं किसी के पॉलिटिक्स की बात नहीं कर रहा हूं, मार्क्स चाहिए सबको, ज्ञान किसी को नहीं चाहिए, ऐसे मार्क्सवादी लोग हमने इकट्ठा किए और विज्ञान किताबों में रह गया, विज्ञान किताबों में रह गया। पुनर्चक्रांकन का महत्व हम भूल गए, सारी चीजों का कचरा नहीं करना है, पुनर्चक्रांकन करना है, ये सारी चीजें हम भूल गए जो हमारी संस्कृति ने हमें बहुत पहले सिखाई थी। ये कोई नई बात नहीं बता रहा हूं मैं, ये जो मैं बात बता रहा हूं वो सालों से चली, सदियों से चली आ रही बात बता रहा हूं कि आपको किसी चीज को कचरा बोलने का अधिकार नहीं है। प्रकृति के विश्वकोश में कचरा शब्द नहीं है, कूड़ा शब्द नहीं है, प्रकृति के विश्वकोश में सिर्फ स्रोत ये शब्द है। और इसीलिए रसोई से जो खाना निकलेगा, रसोई में जो फेंका जाएगा, आप सोचिए कि जब एक केले का एक वृक्ष होता है, केले का पेड़ होता है, उस केले के पेड़ के सिर्फ 10% हिस्सा केले के फल के रूप में आता है, बाकी 90% हिस्सा उसके पत्तों के, उसका जो स्टेम होता है उसके रूप में होता है। मतलब आपको वो 10% केला देने के लिए इसको ये बड़ा संसार खड़ा करना पड़ता है, और इस संसार के रूप में जो मूल तत्व उसमें बंद हुए हैं वो मूल तत्वों को मुक्त करना अहम ब्रह्मास्मि करके मेरा कर्तव्य होता है। ये जो मैंने ऑक्सीजन की बात की, ऑक्सीजन का हिसाब मैंने बताया आपको, मैं पूरे मूल तत्वों का हिसाब बता दूं तो आपका रोज का बिल 21,000 रूपये नहीं आएगा, उससे कई गुना ज्यादा आएगा, क्योंकि शरीर में एक मूल तत्व नहीं होता, 22 मूल तत्व होते हैं। और ये 22 मूल तत्वों की कीमत आप करना शुरू करोगे तो वो मुश्किल हो जाएगी। लेकिन ये 22 मूल तत्वों का हिसाब कैसे करना है, ये जो कचरा निर्माण हुआ है, जो स्रोत निर्माण हुआ है, उसको पुनर्चक्रांकन करना। जब आप एक टन, यहां एक डेढ़ टन की भाषा हो रही है, डेढ़ टन कचरा अगर हम ये बायोलॉजिकल स्रोत जो है इसको हम प्रोसेस करेंगे, बायोगैस में उसका रूपांतरण करोगे, उसके खाद में रूपांतरण होगा, तो कल के डेढ़ टन जो अनाज हमारे सामने रहेगा उसके हम शाश्वती देंगे, उसकी हम गारंटी देंगे कि कल के आने वाले दिन में हमें डेढ़ टन खाना मिलेगा, क्योंकि आज हमने डेढ़ टन कचरे का प्रोसेसिंग किया है। एक टन कचरे में कम से कम 40 किलोग्राम मीथेन होती है। मीथेन एक बहुत अच्छा ईंधन है, बहुत खतरनाक गैस है पर्यावरण के लिए, लेकिन बहुत अच्छा ईंधन है। जलाएंगे तो उस ईंधन से कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होगा और वो चक्रांकित कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होगा। एक टन में अगर 40 किलोग्राम मतलब कम से कम दो सिलेंडर, इतना एलपीजी इतना गैस निकलता है, भारत में कम से कम 1,00,000 टन कचरा पैदा होता है। 1,00,000 टन से 2,00,000 सिलेंडर रोज अगर पैदा करेंगे तो आपको सब्सिडाइज सिलेंडर के लिए झगड़ा नहीं करना पड़ेगा, इतना मैं वादा जरूर करता हूं। लेकिन वो आप से अंदर से आना चाहिए। ये जो चीज मैं कह रहा हूं ये अंदर से आनी चाहिए। इस प्रकृति में मैं आज से कचरा नहीं कहूंगा, आज से मैं प्लास्टिक का इस्तेमाल नहीं करूंगा, आज से मैं साइकिल का इस्तेमाल करूंगा। भारत में इतना सारा पेट्रोल खर्चा हो रहा है, इतना सारा डीजल खर्चा हो रहा है, लोग कहते हैं मेरे पास पैसे है। पैसे की बहुत मर्यादित कीमत होती है, याद रखिए। दो वक्त की रोटी अगर ठीक तरह से मिले और सर के ऊपर एक अच्छा घर रहे, उससे ज्यादा पैसे की कीमत नहीं है। उससे ज्यादा पैसा मिले तो चिंता बढ़ती है, समाधान नहीं बढ़ता, चिंता बढ़ती है। बहुत ज्यादा पैसे के पीछे भागने की जरूरत नहीं है, लेकिन प्रकृति के संपदा के पीछे भागना जरूरी है, क्योंकि वही आपका कर्तव्य है। अहम ब्रह्मास्मि इदम् न मम और एका श्वासातरे अंतर, एक श्वास, अहम ब्रह्मास्मि इदम् न मम, ये तीनों चीजें इकट्ठा डाले तो ये आपका कर्तव्य बनता है कि हर एक कूड़े का, हर एक कचरे का, जिसे आप कचरा कहते हैं, जिसे कूड़ा कहते हैं, उसका पुनर्चक्रांकन करना मेरा कर्तव्य बनता है। अगर मेरा ये प्रकृति में अन्न जो हमें अनाज मिल रहा है ये हमारा अगर हक है, तो उस हक के लिए ये मेरा कर्तव्य भी है कि ये जो कूड़े है उसका मैं पुनर्चक्रांकन करूंगा। साइकिल इस्तेमाल करना जरूरी है। आज इतने सारे लोग, सामने घर के सामने स्कूल होता है लेकिन बाप भी स्कूटर निकालता है, बच्चा बैठ जाता है, दोनों को समझता नहीं हम कितनी गलती कर रहे हैं। छह छह सात सात किलोमीटर, दस दस किलोमीटर अभी भी देहातों में लोगों को साइकिल पे जाना पड़ता है। भारत में एक स्थिति ऐसी थी, जब अब भारत स्वतंत्र हुआ था तब सिर्फ 25% लोग शहर में रहते थे, आज की डेट में 70% लोग अभी शहर में रहने लगे हैं। और 70% लोग शहर में रहने लगे हैं और हरेक के पास टू व्हीलर आने लगी है, हरेक के पास फोर व्हीलर आने लगी है। कितना पेट्रोल और किसके लिए, आजकल कोरिएंडर लाने के लिए, धनिया लाने के लिए भी गाड़ी लगती है। हम सोचते नहीं है हम कितनी गलती करते हैं, पर्यावरण का कितना नुकसान हम करते रहते हैं, हमारे ध्यान में नहीं आता। मेरे पास पैसे हैं मैं कुछ भी करूंगा, एक बहुत अति स्वार्थी प्रवृत्ति हमारे शरीर में, हमारे मन में पैदा हुई है। आप सभी को मेरा आह्वान है, एक अच्छे माहौल में आप आए हो, एक पवित्र माहौल में आप आए हो, जिसे वाइब्रेशन कहते हैं, जिसे एनर्जी कहते हैं, इसकी आपको शायद यहां अनुभूति होती होगी। इस अनुभूति से जब आप वापस जाओगे तो ये वाइब्रेशन साथ लेके जाइए, ये वाइब्रेशन साथ लेके जाइए और कहिए खुद को और कहिए लोगों को कि जितना अध्यात्म जरूरी है उतना ही विज्ञान जरूरी है। ये सारा समझना बहुत जरूरी है। कचरे को कचरा कहना बहुत गलत बात है, प्लास्टिक का इस्तेमाल नहीं करना है, साइकिल का इस्तेमाल करना है। सारी चीजें दोहराते रहो, सारी चीजें लोगों को बताते रहो। हमारे हरिवंश राय बच्चन जी ने एक बहुत अच्छी कविता लिखी थी, उन्होंने लिखा था आता हो गई, जो बसते हैं वो उजड़ते हैं प्रकृति के जड़ नियम से, जो बसते हैं वो उजड़ते हैं प्रकृति के जड़ नियम से, लेकिन जो उजड़े हैं उनको फिर बसाना कब मना है, अंधेरी रात में हाथ में दिया लेना किसने मना किया है, और ये दिया आपके सामने विज्ञान ने दिखाया है। महात्मा गांधी जी ने कहा था कि भारत के लिए बायो एनर्जी, जैविक ऊर्जा बहुत अहम महत्वपूर्ण है। 70 साल के आसपास गोबर गैस प्लांट बनना शुरू हुए थे और बहुत सारे गोबर गैस प्लांट बन चुके और कई सारे गोबर गैस प्लांट बंद भी हो चुके, उसके कारण अनंत थे। महात्मा गांधी जी ने कहा था एक गाय का महत्व क्या होता है, एक गाय का महत्व होता है वो सिर्फ 5 या 6 साल दूध देती है, 7 साल दूध देती है, 5 बार उसे 5-6 बार बछड़ा होता है, उससे ज्यादा नहीं होते है। तो 5-6 साल वो दूध देती है, लेकिन उसका जो आयुष्य होता है वो 25 साल होता है। 25 साल में वो जो गोबर देती है ना वो उसका महत्व होता है। उस गोबर से रोज 2 घरों को ईंधन मिलता है और 1 एकड़ खेती को उसका 1 साल में खाद मिलता है। मतलब उसके लाइफ टाइम में 25 साल में वो 25 एकड़ खेती को अपना खाद दे सकती है और 50 घरों को वो ईंधन दे सकती है और 10-12 घरों को दूध दे सकती है। ये गाय की कीमत है। ये महात्मा गांधी जी ने गाय की कीमत को पहचाना था। उन्होंने कहा था कि हमारे देश में गोबर गैस बनने चाहिए। गोबर गैस तो बने लेकिन गोबर गैस बंद भी हो गए। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र में मैं 12 साल पहले जब हमारे किचन से निकले हुए ये जो कूड़ा अभी जिसे स्रोत कह रहा हूं मैं, स्रोत के बारे में चर्चा हो रही थी, तब मैंने कहा हमारे जो निदेशक थे डॉक्टर काकोड़कर उनको कहा कि हम इसका बायोगैस बना सकते हैं और ये बायोगैस में कोई तब्दीली मैं करना चाहता हूं, और वो तब्दीली करके मैंने एक सामने बायोगैस लाया। उसमें जो आपका गोबर गैस था उसका जो फ्लोटिंग डोम और उसका जो डाइजेस्टर है वो वही रखा, लेकिन उससे पहले कई चीजें जोड़ दी। उससे पहले एक मिक्सर जोड़ दिया, उसके पहले एक प्री डाइजेस्टर जोड़ दिया और उसके आगे एक मैन्यूअर के पिट और उसमें पानी रिसाइकलिंग की सिस्टम, ऐसी सारी चीजें जोड़ के एक नए तरीके से बायोगैस आपके सामने लाया। और वही डेढ़ टन का एक प्रोजेक्ट हम आपके इस आश्रम में लगाना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ जो जैविक कूड़ा निकलता है, जैविक स्रोत निकलता है, वो डेढ़ टन के आसपास निकलता है। वो डेढ़ टन कूड़ा आएगा, एक मिक्सर में जाएगा, जैसे हमारी इडली की चटनी बनती है वैसी उसकी चटनी बनेगी। उसमें अगर एक टन हम स्रोत डाल रहे हैं तो इसमें एक लीटर, एक किलोलीटर, 1000 लीटर पानी डालना पड़ेगा, और उसका जो घोल बनेगा वो घोल पहली टंकी में चला जाएगा, ये टंकी जमीन के नीचे होगी। उसमें हवा दी जाएगी, उसमें गर्म पानी दी जाएगा, और ये गर्म पानी और हवा से उसका थोड़ा सा विघटन शुरू होगा, और उसका पूरा विघटन होगा दूसरी टंकी में, जहां एक टंकी से दूसरी टंकी में वो ग्रेविटी के साथ बह जाएगा, और वहां उसका मीथेन बनना शुरू हो जाएगा। और जब मीथेन बनने के बाद जो भी बचेगा वो रहेगा खाद, वो खाद आएगा बाहर, वो खाद के जो उसके लिए गड्ढे बनेंगे उसमें आ जाएगा, उसमें कुछ फिल्ट्रेशन सिस्टम रहेगी, उसमें से पानी निकाला जाएगा, वो पानी वापस सिस्टम में चला जाएगा और खाद जाएगा खेत पे। तो एक टन जो कूड़ा है, एक टन जो स्रोत है, उसका हमने रूपांतर किया 30 किलोग्राम मीथेन में, उसका रूपांतरण किया 70 किलोग्राम खाद में, और उसका रूपांतर किया 150 किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड और बाकी बचा पानी उसमें। और ऐसे ही सारे मूलतत्व तो मुक्त होकर वापस चले जाएंगे, हमें ऊर्जा मिलेगी और देश में कूड़ा नहीं रहेगा। मैं यही चाहता हूं कि इस आश्रम से कोई भी कूड़ा म्युनिसिपैलिटी या ग्राम पंचायत की तरफ फेंका नहीं जाएगा, कोई भी विलेज में यहां से कोई भी कूड़ा उठा के फेंका नहीं जाएगा। अगर हम इस आश्रम को कूड़ा मुक्त कर सकते हैं तो हम सारे देश को भी कूड़ा मुक्त कर पाएंगे। 6 महीने के बाद अगर ये प्लांट 6 महीने में अगर हो गया तो मैं आपको वादा दिलाता हूं कि इस आश्रम से कोई भी रसोई का कूड़ा बाहर नहीं जाएगा, और उसके साथ साथ जो ड्राई वेस्ट ड्राई आएगा कूड़ा, जो उसे सूखा जो स्रोत आएगा, उसकी कीमत अपने आप बढ़ जाएगी। क्योंकि आज एक मानसिकता ये होती है, प्लास्टिक में डाल के हम चावल फेंक देते हैं या प्लास्टिक में डाल के सब्जी फेंक देते हैं, तो ना तो प्लास्टिक इस्तेमाल होता है प्रकृति के लिए, ना चावल इस्तेमाल होता है। अगर हम उसे अलग अलग रखें, प्लास्टिक रिसाइकलिंग को चला जाए, और ये जो स्रोत है जैविक उसका बायोगैस बने, तो दोनों का इस्तेमाल होगा और डंपिंग यार्ड पे कोई गंदगी नहीं दिखेगी। आज पूरा देश डंपिंग यार्ड जैसे दिखता है, उसका कारण हमारी मानसिकता में है। हम कहते हैं म्युनिसिपैलिटी अपना काम नहीं कहती, मैं कहता हूं म्युनिसिपैलिटी के पहले, म्युनिसिपैलिटी को दोष देने से पहले खुद की तरफ देखो। अगर मेरे घर में पैदा हुआ 300-400 ग्राम कूड़ा अगर मैं अलग अलग नहीं रख सकता हूं, तो मुझे क्या हक है कि म्युनिसिपैलिटी का 6000 टन कूड़ा अलग अलग नहीं होता है, ये कहने का मुझे कोई अधिकार नहीं है। भारत में एक परंपरा रही है, हम सवाल खड़े करते हैं और फिर उनको सुलझाने की कोशिश करते हैं। पहले हम सवाल क्रिएट करते हैं, क्योंकि उसे एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम कहा जाता है, कि मैं खुद सवाल निर्माण करूं और फिर वो सवाल सुलझाने की कोशिश करूं। लेकिन आप लोगों को यही दोनों हाथ जोड़ के, आप लोग यहां एक अच्छे वातावरण में बैठे हैं, एक अच्छी वेवलेंथ में आप बैठे हैं, ये वेवलेंथ मैच होने दीजिए। ये वेवलेंथ मैच किससे होने दीजिए? ये वेवलेंथ प्रकृति से मैच होने दीजिए। प्रकृति के आपसे कुछ अपेक्षाएं हैं, आपकी तो बहुत अपेक्षाएं हैं प्रकृति से, हमें आम के फल दे दो, हमें केले के फल दे दो, हमें चावल दे दो, हमें गेहूं दे दो, हमें कपड़े दे दो, बहुत अपेक्षाएं हैं हमें प्रकृति की, प्रकृति से। लेकिन प्रकृति की भी आपसे कोई अपेक्षा है, प्रकृति कह रही है ये जो सारा कूड़ा कचरा पड़ा है वो मुझे वापस दे दो, ठीक तरह से वापस दे दो, तभी मैं आपका जो इंडेंट है, आपकी जो रिक्वेस्ट है, इसे हम मैं पूरा कर पाऊंगी, अगर ये नहीं दोगे तो वो नहीं मिलेगा। और एक दिन आएगा, लोग कहते हैं सर प्रलय कब होने वाला है क्या, मैंने कहा प्रलय तो शुरू हुआ है, जब ये स्वार्थी प्रवृत्ति बढ़ गई वहां से प्रलय शुरू हुआ है। और वो प्रलय थाम रोकने का, वो प्रलय थामने का एक ही तरीका हमारे पास है, कि हम अहम ब्रह्मास्मि इदम न मम और एक श्वास, ये सारों का एक अच्छी तरह से प्रयोग करना शुरू करें। और ये जो बायोगैस संयंत्र मैंने बताया वो संयंत्र जहां हो सके लगाए, जहां नहीं हो सके वो कंपोस्टिंग का एक पिट बना के उसमें डाल दीजिए जहां उसे खाद बनेगा, लेकिन करिए जरूर। आज से आप तय कीजिए, 3,500-4,000 लोग अगर तय करेंगे मेरे घर से कूड़ा म्युनिसिपैलिटी में नहीं जाएगा, बहुत बड़ा फर्क आएगा और देश की तरक्की हो जाएगी। मेरा ईमेल एड्रेस है sharadkale@gmail.com, sharadkale@gmail.com, sharadkale@gmail.com। कहीं भी कुछ सवाल मन में है जरूर पूछिए, जवाब देने में आनंद होगा। और अध्यात्म के साथ साथ विज्ञान का विचार करके वापस जाइए, इतनी ही मेरी आपसे दोनों हाथ जोड़ के नम्र विनंती है। आपने मेरा भाषण सुन लिया, जैसे मैंने शुरुआत में कहा था कि मेरा जो मेरे चार शब्द है वो मेरा भाषण खत्म होने के बाद शुरू होंगे, इसका मुझे आपके तालियों से पता चलता है। धन्यवाद।
ओम शांति। इन्होंने जो बात कही उसका मैं इकोनॉमिक्स के दृष्टिकोण से बता दूं, जो कचरा जो है जिसको कहते हैं किचन वेस्ट, रोज का 1.5 टन निकलता है, अगर उसको कचरा को फेंकने के जाने का होता है तो कम से कम 4 ट्रैक्टर ट्रॉली कितने दूर तक जानी पड़ती है फेंकने के लिए, और काफी खर्चा होता है। उसके बदले में ये जो कचरा जो है किचन वेस्ट जो है उसके द्वारा रोज के 2 सिलेंडर भी गैस निकले तो महीने का 60 सिलेंडर गैस निकले, और एक सिलेंडर का आज जानते हैं कि कमर्शियल रेट के हिसाब से 1300 रुपया होता है, 1300 रुपये के हिसाब से गिनती करें तो 78,000 रुपये का गैस एक महीने में मिल सकता है। एक ट्रैक्टर ट्रॉली ट्रैक्टर के द्वारा भेजने का डीजल का खर्चा बच जाएगा, और ये जो होगा गैस निकलेगा उसके बाद का जो होगा वो तपोवन और नदी किनारे आदि जो भी वहां पर खेती होती है उसके अंदर खाद के रूप में आ जाएगा, और हमारी जैविक खेती जो है उसके अंदर भी लाभ हो सकता है। अर्थात कम से कम महीने का 1,00,000 रुपये की बचत हो सकती है और साल का 12,00,000 रुपया इस प्रकार से कोई भी प्रकार की मेहनत किए बिना इस प्रकार से बाबा के घर में बचत हो सकती है। तो इस प्रकार से ऐसे कारोबार के अंदर हमारे दोनों लार्सन एंड टुब्रो से और भाई साहब डॉक्टर काले जो यहाँ आए हुए, इनका मैं आप सबकी ओर से या विश्वविद्यालय की ओर से खूब 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 दिल से आभार मानता हूँ। आप सबने भी उनको देखा सुना और आपने उनके भी विचारों को सुना होगा। हम भी जो चाहते हैं कि साइंस और स्पिरिचुअलिटी दोनों आपस में मिलजुल करके कैसे कारोबार कर सकते हैं, इस प्रकार से विज्ञान के क्षेत्र के भाई हमारे पास आए हुए हैं और आकर के हमको आध्यात्मिकता के साथ विज्ञान का समन्वय कैसे हो सकता है, उस प्रकार से हमारी जो खर्च किया जो खर्च का जो अमाउंट है उसके अंदर बचत कैसे हो सकती है बताने के लिए आया हुआ है। तो इस प्रकार से मैं उनका भी उसी दृष्टिकोण से आभार मानता हूँ कि यज्ञ की बचत उन्होंने कहा है कि हम आपके यज्ञ की खर्चा जो होता है उसमें कम से कम 20% बचत करके दिखाएंगे। ओम शांति। 1 मिनट बाबा की याद में बैठ करके हम विदाई लेंगे।
सिर मोर बनाए दुनिया का सिर मोर।